सर, मेरा सर आपसे क्वेश्चन ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे होते हैं, रेजिडेंट्स होते हैं, आजकल एग्ज़ाम्स का सीज़न भी चल रहा है, कई तो ऐसे होते हैं जो रिटन ही नहीं पास कर पाते, बार बार अटेम्प्ट्स देनी पड़ती हैं, कई अगर कर लें तो फिर होता है कि प्रैक्टिकल पास नहीं हो रहा या एक्सपायर हो गया, फिर दोबारा किया तो फ्रस्ट्रेटेड हो स्टेज पे आए होती हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आपकी क्या होगी एडवाइस कि कैसे जो नहीं हो रहे पास, क्या कैसे हैंडल किया जाए?
इसमें ना सर वो ये जो कल निश्चर में वाक्या हुआ है
हाँ
वो थोड़ा सा मैं चाहूंगा उसको भी
जी।
बारे में।
अब ये ना, इसका जवाब बड़ा मल्टी फैसेटेड है। मेरे ख्याल के अंदर अगर मैं इसको मुख्तसर बताऊं तो सबसे पहले ना, एक हायर लेवल पर ना हमारी जो इंडक्शन पॉलिसी है ना, खास तौर पर MBBS के अंदर इंडक्शन पॉलिसी, इसको बहुत सीरियसली रिविजिट करने की जरूरत है, बहुत सीरियसली। आप खुद बताएं ना कि जिस बच्चे को मेडिकल कॉलेज में एक आपके बच्चे हैं ना, आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अभी से ना आपके आपको ना अभी एक एंजाइटी हो रही होगी कि या अल्लाह मैं कैसे बनाऊंगा इसको डॉक्टर, ओए होए होए FSC में क्या करेगा ये, और उसके बाद फिर MD कैट में बैठेगा। वो हमारे एक दोस्त हैं, वो मियाँ बीवी दोनों बहुत हमारे करीबी दोस्त हैं, वो दोनों प्रोफेसर हैं, तो उनके बच्चों के आए 91% इतने नंबर, तो कहने लगा जावेद यार, मतलब मैं प्रिंसिपल ज़ाहिर था उस वक्त, तो वो मुझे कहते थे कि यार भी वाइट कोट सेरेमनी होगी ना तो कितना मज़ा आएगा कि मैं और मेरी बीवी प्रोफेसर का गाउन पहन के ऊपर बैठे होंगे और मेरे दोनों बच्चे वॉक इन करके आएंगे। अल्लाह का शुक्र हुआ है 91% नंबर आ गए हैं उनके, 91 पॉइंट कुछ नंबर आ गए हैं, तो ये होगा। तो मैंने ऐसे मजाक में कहा, मैंने कहा भाई पेरेंट्स को ऊपर नहीं बिठाते, पेरेंट्स को नीचे बिठाते हैं, तो वी वर ऑल सेलिब्रेटिंग, हमारे अपने बच्चों की तरह है। अब जब वो सारा बना, उनका सरकारी अस्पताल में हुआ ही नहीं विद 91% मार्क्स, यानी 91% नंबर लेके बच्चा इस काबिल नहीं है
सरकारी हॉस्पिटल
में आ जाए। अब आप बताएं, अब कितना प्रेशर हमने पेरेंट्स के ऊपर डाला हुआ है इनको मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, ठीक है, और उसको जाने का सिंपल क्राइटेरिया ये है कि आप कितने बड़े तोते हैं, कितना आप रटा लगा सकते हैं और कितने नंबर ले सकते हैं। मुझे आप बताइए, बीइंग अ डॉक्टर, इस बात की कितनी अहमियत है कि आपने FSC में कितने नंबर लिए थे? और एक एक ऐसा बंदा जिसके FSC में नंबर नहीं आए, हो सकता है इतना स्ट्रांग पोटेंशियल उसमें एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने का, जिसको सिस्टम ने रिजेक्ट करके उस फिल्टर से में से नहीं गुजरने नहीं दिया, ठीक है, जिसके नतीजे में हमारा जो इंडक्शन है, मेरा भांजा है, ही इज माई सन इन लॉ एज वेल, मेरी बहन का बेटा माशाल्लाह, उसका वो BDS उसने किया था ट्रिनिटी कॉलेज, वहीं रहते थे डबलन में, तो उसने मुझे अपने इंटरव्यू में बताया कि जब मेरी सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू हुआ तो उनका मामू मुझसे तो एक भी उन्होंने सवाल बायोलॉजी का नहीं पूछा, वो तो ये कुछ और बातें मुझसे पूछते रहे, हॉबीज के बारे में पूछते रहे, शौक बारे में, गेम कौन सी करते हो, क्या करते हो, बस दैट्स इट। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका MBBS में नहीं बल्कि BDS में हमने सेलेक्ट कर लिया, हालांकि कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा। तो बेसिकली एक बंदे के बायोलॉजी में कितने नंबर हैं, इसकी बुनियाद पे हम फैसला करते हैं कि वो एनाटॉमी अच्छी पढ़ेगा। भैया एनाटॉमी तो आप उसको पढ़ा ही लेंगे आके, उसका एप्टीट्यूड क्या है। इसलिए बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम की एक वजह यह है कि जिन लोगों को हम इंडक्ट कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर उनमें से सारों का वो एप्टीट्यूड नहीं होता जो कि डॉक्टरी का एप्टीट्यूड है। देखिए मैं ये जब प्रिंसिपल था ना, तो मैं मेक श्योर करता था कि 1-to-1 हर स्टूडेंट के साथ प्रिंसिपल खुद इंटरेक्ट करे विद दी, वे एक साथ सेक्रेटरी बैठता था, एक डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, और जब हम बच्चों के इंटरव्यू लेते थे यानी उनके साथ एक एक करते थे सेशन, आप यकीन करें फ्रैंक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स विद यानी स्टूडेंट्स विद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, पेशेंट जिनको अटेंशन डिसऑर्डर्स थे, पेशेंट जिन सॉरी पेशेंट मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स कि जिनसे पूछेगा उनका मैं तो बनना ही नहीं चाहता था, मुझे तो मेरी अम्मी अबू ने बनाया। अब इनकी तादाद कम होगी वरना 30-40% हाथ खड़ा करते थे कि हम तो अपनी वजह से बने ही नहीं है। अब एक तो आपने जो इंडक्शन सिस्टम लेके है जिसकी वजह से जो ही एक स्पेसिफिक टाइप का प्रेशर उनके ऊपर पड़ता है स्टेजेस का, सब स्टेजेस का, टेस्टों का, तो एकदम वो सारे वो हो जाते हैं। एक तो इस एरिया पर हमें मेहनत करने की बहुत सख्त जरूरत है।
अच्छा इसको एडिट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा ऐड कर रहा हूँ सर इसमें थोड़ा।
नहीं क्यों एडिट क्यों करना है, बोलते रहे साथ।
उसमें थोड़ा डेंटल का भी ऐड कर दीजिए, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन जो चाहते ही नहीं है डेंटल में आना, उनका हो जाता है वो फिर इस
आप सही कह रहे हैं।
MBBS में नहीं होता तो ऑब्वियसली फिर डेंटिस्ट।
भाई सिंपल सी बात है ना कि अब यह है कि चूंकि वो मजबूरी है उसकी कि उसका वहां नहीं आया डेंटल में आया,
फर्स्ट ऑप्शन नहीं होती
उनकी, हाँ तो वो डेंटल में चला गया, तो अब वो कहता है मैंने तो MBBS करना था और वो डेंटल में चला गया, ठीक है ना। तो एक तो वो यानी रॉन्ग सिलेक्शन है ना, रॉन्ग प्रॉपर एप्टीट्यूड के बंदे हमने सिलेक्ट नहीं किए. मैं ये नहीं कहता सारे, अक्सर होते होंगे,
वाइस वर्सा भी होता है,
वाइस भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी होता है. हाँ अच्छा, दूसरा जो प्रॉब्लम आपके वगैरह के पास नहीं हो रहा है, वो हो रहा है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना एज सच, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर नर्सरी क्लास टू ऊपर तक, उसके लिए एक मेजर ओवरहॉल उसके करने की जरूरत है. और हमने ना सबसे फाइनेंशियली सबसे कम पैसा उस पर डाला है. हुकूमतों की कभी ये प्रायोरिटी नहीं रही, हुकूमतों की कभी प्रायोरिटी नहीं. एजुकेशन सिस्टम का पर्पस सिर्फ एक रह गया है कि कैसे हम पैसा कमाने की सलाहियत पैदा करने वाले लोग करें. आपके भी बच्चे, आपके कितने बच्चे हैं? चार बच्चे. क्या करें, बड़ा माशाल्लाह डॉक्टर बन गया है, दूसरा जो है वो इंजीनियर बन गया है, तीसरा जो है ना वो एक बिजनेस कंपनी है उसके अंदर वो काम करता है, चौथा जो है वो दुबई में चला गया है और वहाँ कोई बिजनेस करता है, अल्लाह का शुक्र है चारों बड़े सेट हैं. तो वालिद क्या कह रहे हैं कि मेरे चारों बच्चों का पैसे कमाने का पोटेंशियल उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया है. तो जिंदगी का सिर्फ ये एक एस्पेक्ट है जिसको, उसको भी बौद्धिक तरीके से एड्रेस किया जा रहा है, मतलब उसको भी बहुत एफिशिएंटली नहीं किया जा रहा. तो ये एक एस्पेक्ट है जो जॉब देने के काबिल बनाना हमारे एजुकेशन सिस्टम का पर्पस है. जबकि एजुकेशन सिस्टम का पर्पस जिंदगी गुजारने का फन सिखाना होना चाहिए. ये तब मुमकिन है कि हमारा पॉलिटिकल विल हो, वो पॉलिटिकल विल के बाद वो पॉलिटिकल विल ट्रांसफर हो आगे जाके टेक्निकल लोगों के साथ. यानी मुल्क का वजीर आजम कहे कि यार मैंने एजुकेशन के से मैंने लोगों की सोशल कैरिकुलम पढ़ा के और मैंने उनको जिंदगी गुजारने वाला बनाना है, सक्सेसफुल इंसान बनाना है, वो ये कहे तो वो आगे जाके हम क्या करें. वो कहें सर जी हायर एजुकेशन कमीशन से बात करते हैं, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फलाना टेक्निकल आदमी उससे बात करते हैं, सेक्रेटरी हेल्थ से हम बात करें, ये सारे बैठ के टास्क फोर्स बनाकर नीचे ट्रिकल करें, फिर वो इसके हिसाब से टीचर्स की ट्रेनिंग हो, इसके हिसाब से फिर आगे ट्रांसफर हो और ये पूरा. अब ये सारा का सारा काम है जो कि अल्लाह करे हमारा जो मैं हमारे वजीर आजम साहब कोई बात समझ आ जाए, पता ही होगी वैसे, इज़ अ वेरी वाइज मैन अदरवाइज पूरी दुनिया में, कि ये करने की जरूरत है. और इसके लिए को बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं है. तो एजुकेशन सिस्टम चाहे आप प्राइमरी स्कूल का है, चाहे हाई स्कूल का है, चाहे कॉलेज का है, चाहे हमारे मेडिकल कॉलेजेस का है, वो सारा का सारा गियर्ड ही एक अथॉरिटेटिव टीचर ओरिएंटेड कन्वेंशनल टाइप की टीचिंग के ऊपर है, जो कि फॉस्टर ही नहीं करता स्टूडेंट के अंदर एक सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग और एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर. और दूसरी बात है मॉनिटरिंग बिल्कुल कोई नहीं है. हर एक सुपरवाइजर है वो बड़ा अच्छा पढ़ा रहा है, एक पढ़ा ही नहीं रहा, तो कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं है, कोई उसको सुपरवाइजरी से उतारेगा नहीं. जैसे ना किसी का फादरहुड कोई ले नहीं सकता, अब्बा किसी को चंड मार रहा है, किसी से प्यार कर रहा है, तो अब्बा ही रहेगा, चाहे जो मर्जी कर लो, तो सुपरवाइजर बिकम्स अब्बा. तो ये तो मुझे अब्बा ही, मैं तो अब्बा ही हूं, तो मैं क्या कर सकता. तो आप उसको कोई मॉनिटर भी नहीं कर सकते उसको नहीं. इसलिए मैं नहीं मानता इस बात को कि एक आदमी ने MBBS किया, उसने पार्ट वन कर लिया, उसके बाद वो चार साल वार्ड में रहा और फिर वो थ्योरी पास नहीं कर रहा. इसमें आप जितना मर्जी उस लड़के को ब्लेम किया, लड़की को ब्लेम करें, मेरे ख्याल में मेन ब्लेम गोज टू सुपरवाइजर्स. स्ट्रक्चर्ड सिस्टम वहां मौजूद नहीं है, सुपरवाइजर उसको बॉदर नहीं करता. अगर सुपरवाइजर बॉदर करने लग जाए और प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करने लग जाए, तो आप किसी सुपरवाइजर पूछें कि यार क्या पढ़ते ही नहीं जी, आंदे ही नहीं है, तो वो गल नहीं साढ़े वाली, कोई गल नहीं जी, मैं ऐसे ही होंगे सर, उस किस्म की इस बोधी मिसालें देना शुरू कर देते हैं हम सब, मतलब हम सब शामिल हैं उसके अंदर. तो सुपरवाइजर सिस्टम, लिहाजा मैं बात बहुत लंबी हो गई थी, ज़िमनी बातें उसमें आ गई, लेकिन आपके सवाल का जवाब यही है कि जिस जगह पर वो जो कच्ची रोटी निकल रही है ना, वो तंदूर के अंदर आग नहीं सही लगी हुई, उस तंदूर के अंदर प्रॉपर तरीके से आग नहीं लगी हुई, इसलिए वो जो रोटी आपने लगाई है वो कच्ची निकल रही है उसमें. अगर आप किसी जगह पर भी स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बना दें, और मैं तो अपने सुपरवाइजर दोस्तों को ये कहता हूँ जो मेरे कुलीग हैं, उनको ये कहता हूँ कि सिर्फ आपका काम नहीं है, फोर्थ ईयर रेजिडेंट को इतना पक्का करें कि फोर्थ ईयर रेजिडेंट थर्ड ईयर को पढ़ा रहा हो, पीयर असिस्टेड लर्निंग, थर्ड ईयर वाला सेकंड ईयर को पढ़ा रहा हो, सेकंड ईयर वाला फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहा हो. आपने तो पीछे बैठना है, आप तो जैसे आपने अखाड़ा देखा है दंगल, गुजरा वाला वगैरह में दंगल, एक बूढ़ा सा आदमी बैठा तो इसका पेट लटका हुआ होता है, पीछे बैठा होता है ऐसे करके, और थोड़ी देर बाद जाके ना ऐसे वो पलवान के ऊपर मिट्टी डाल देता है थोड़ी सी ऐसे करके ना, पीछे उसको स्लिपरी हो रहा था ना, मिट्टी डाल के ना चल चल चल, अभी पचे कर, ओए टोपी ला, तो भी पटरा ला, ओए मोती चूर ला, ये दाव के नाम है जो सारे, वो पीछे बैठा होता है सिर्फ. तो सुपरवाइजर तो ये होना चाहिए जो पीछे बैठा हुआ है और आगे उसके सारे पट्टे जो लड़ रहे हैं, लेकिन वो नज़र उसकी होनी चाहिए, वो काबी तो ये तो अब तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके यूनिट में इस तरह कुछ है, अपने सुपरवाइजरी सिस्टम को मजबूत करें, तो आप देखिएगा कोई सारे पास हो जाएंगे।